विचेतन जो वस्तु है, चित वस्तु है, वह दो प्रकार की होती है। चिन्मय वस्तु दो प्रकार की होती है, एक होती है स्वतंत्र चेतन और एक होता है अस्वतंत्र चेतन। हमारे अंदर में जो जीवात्मा है ये अस्वतंत्र चेतन है, अभी माया के द्वारा आच्छादित है। माया संसार में हम काम करते हैं, अपनी इच्छा अनुसार करने पर भी नहीं कर सकते, इसलिए हम अस्वतंत्र अभी बद्ध रहे। मुक्त होने पर भी भगवान के प्रतंत्र रहेंगे, इसलिए किसी भी स्थिति में ये स्वतंत्र नहीं होगा। और एक स्वतंत्र चेतन है, वो कौन है? नारायण है, कृष्ण है, मूल सत्य है, वो कृष्ण है। उन्हीं के अंश नारायण कृष्ण इत्यादि सभी ये स्वतंत्र तत्व है, स्वतंत्र चेतन। अब ये स्वतंत्र चेतन भी दो प्रकार के होते हैं, तो मैंने इसलिए सुनेंगे तब समझ में आएगा, साधारण नहीं। आज जो कुछ थोड़ा सा आगे अग्रसर है वो समझेंगे। तो कहते हैं एक माया से स्पर्श रहित और दूसरे हैं माया स्पर्श युक्त। नारायण इत्यादि है, माया से कोई भी संबंध नहीं है ये जगत। कृष्ण, राम, नृसिंह, कल्कि, वामन, जितने भी भगवान के स्वांश अवतार हैं उनसे माया का कोई भी स्पर्श नहीं है, ये भी शुद्ध तत्व है। किंतु माया का स्पर्श जिनसे हो जाता है, जिस ईश्वर का, माया में बद्ध नहीं होते। दो प्रकार का है, एक कपड़े को से ओढ़ करके अपने को ढक लेना, एक बार कपड़े से अपने को ढक लिया। और एक होता है एक कपड़े को किसी रंग में रंग डालो, ये तो अंतर समझ में आ रहा है। कपड़े को रंग में डाल दो, रंग के साथ में वो मिल गया, किंतु गेरू रंग में हम जो रंगते हैं, इसको साबुन दे करके, अच्छी तरह से दे करके देने से इसको सफेद हो जाता है, किंतु मिल गया है। कपड़ा उससे अलग है, कपड़े पर रंग लगा और मालूम होता है कि वो कपड़े के रगरग में मिल गया, किंतु कपड़े के में वो रगरग में नहीं मिला है, उसको साबुन से इत्यादि से उसको दूर कर दिया जा सकता है ना? और एक होता है अपनी लीला के लिए जगत में अवतरित होकर के और मनुष्यों की जो लीला करते हैं, प्राकृत या नर्वत लीला जो करते हैं, वो माया से उनका संपर्क नहीं, कभी कभी माइक भाव से अपने को ढक लेते हैं, कैसे? जोग माया के द्वारा, जिसे कि साधारण आदमी नहीं करते, वो कृष्ण इत्यादि। और शंकर ऐसा तत्व है कि है तो स्वतंत्र किंतु माया स्पर्श से युक्त है, कपड़े से जैसे रंग देते हैं ऐसे तामसिक गुण से रंगे हुए हैं, किंतु उनसे उनका संपर्क नहीं। जहां जरूरत काम खत्म हो गया और जो भी अवस्था खत्म हो गया, माया से संपर्क नहीं। एक हल ये है, लाख होता है, लाख को पिघला दो और उसके अंदर में रंग मिला दो और फिर वो सूख गया। अब उसको झूलो तो फुलाई करो तो लाख साबुन दो, नहीं कभी छूट नहीं सकता। जीव कभी भी ब्रह्म नहीं हो सकता है, जीव में कभी कभी भगवान की शक्ति का प्रवेश होता है, उसको आवेश अवतार कहते हैं। जैसे व्यास, पृथ्वी, ये सब कपिल देव जी, ये जीव तत्व में भगवान का आवेश है, वो शांत नहीं है और जगत का काम करा लेते हैं। परशुराम जी जैसे भगवान के अवतारों में एक कहे जाते हैं, किंतु वो शांत नहीं है, विभिन्न अंश उनमें भगवान शक्ति प्रवेश करा करके जगत का काम करा लिया। रामचंद्र जी ने उनसे वो छीन लिया, धनुष यज्ञ में नहीं स्वयंवर में रामचंद्र जी लक्ष्मण जी आए, धनुष तोड़ा तब उसमें परशुराम जी आए, एक ही बात पृथ्वी का संहार किया और अत्याचार को और ये सब चीजों को पापों को जगत से दूर करने की चेष्टा, ये साधारण व्यक्ति का काम नहीं है, दूसरों के लिए संभव है। किंतु भगवान की शक्ति उन्होंने प्रवेश करके ये काम कराया
है जी,
है जीव तत्व। और जो ही रामचंद्र जी ने और उनका साक्षात्कार हुआ, लक्ष्मण जी ने क्रोध का उद्रेक उनमें कराया और जितना क्रोध होता गया उनका वो अवतार का जो भगवान का जो शक्ति थी राम में चलती गई, अंत में सब चली गई और ये केवल ऋषि हो गए। इसलिए ये कैसा, ये जीव में आया किंतु ये सखत कृष्ण और राम नहीं है, किंतु कल्कि जी हैं, वामन जी हैं, कच्छप अवतार हैं, नारायण इत्यादि हैं, वो सभी जो शंकर जी ऐसे नहीं है। शंकर जी कैसे हैं, माया से स्पर्श किया हुआ, स्पर्श करके जगत का में तामसिक गुण के द्वारा जगत का ध्वंस करते हैं, संहार करते हैं, सृष्टि कराते हैं, ये सब। इसलिए किंतु जब वो कर रहे हैं तामसिक गुण को लिए हैं, तामसिक गुण छोड़ देंगे वो सदाशिव होकर के बीतती है। इसलिए शंकर में और राम में, शंकर जी में और उनमें अंतर है, तत्वता एक है। इसलिए ब्रह्म संहिता में कहा गया जैसे दूध है, दूध में दही डाल करके या कोई खटाई डाल दो तो वो जम जाएगा, किंतु जमने पर भी वो बदल तो गया रूप, किंतु तब तो उसमें जो घी है जो दूध में था दही नहीं हो, इसमें कोई अंतर नहीं। इसलिए दही भी दूध ही है, किंतु दही दूध नहीं होगी, जो तामसिक रूप से जगत का संहार इत्यादि करते हैं उस रूप में भगवत तत्व से कुछ थोड़े से अलग से दिखते हैं, किंतु तत्वता ही एक है, दही और दूध तत्वता एक है। उसी प्रकार से शंकर जी हरि और हर एक तत्व है, ब्रह्मा जी का ये नहीं है, ब्रह्मा जी जीव तत्व है और उसमें भगवान प्रवेश करके उसे जगत की सृष्टि करा देते हैं। जी कितने जन्मों में, 100 जन्मों में वैसा यदि कार्य करेंगे तब शिवत्व लाभ करेंगे, इसलिए ब्रह्मा जी उनसे श्रेष्ठ है, ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ शंकर है। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, तामसिक गुण से राजसिक गुण श्रेष्ठ होता है, विरक्त मत होंगे तो ऐसा सुनेंगे ये तत्व काम करेंगे, रुचि इसमें नहीं लगेगी, ये तत्व है ना, किंतु तो भी थोड़ा सा सुनिए, मैं रुचिकर बना करके कह रहा हूं। सत रज और तम है, इसमें तम से श्रेष्ठ है रज, रज से श्रेष्ठ है, ये बात ठीक है ना। शिव जी तामसिक गुण के अधिष्ठात्री देवता है और राजसी के हैं ब्रह्मा जी और विष्णु है सत्य, तो दोनों से श्रेष्ठ हैं, ये बात तो ठीक है, किंतु शंकर जी तामसिक गुण के अधिष्ठात्री देव होकर के भी ब्रह्मा जो राजसिक है उनसे श्रेष्ठ कैसे हो गए, कैसे हो गए? इसको इस प्रकार से जीव गोस्वामी ने बतलाया, एक लकड़ी है, एक धुआं है और एक ज्वलंत अग्नि है ना। अग्नि ज्वलंत है, ये सत्व गुण का परिचय है, ये विष्णु तत्व है, उसमें धुआं नहीं है। और जब केवल धुआं ही निकल रहा हो, केवल धुआं निकल रहा हो तो उसे आंखें बंद हो जाएगी, नाभि बंद हो सकती है, शरीर और कपड़े को भी धुआं काला कर देगा और उसमें से अग्नि को देखने नहीं देगा, इतना धुआं ही धुआं। एक लकड़ी को भिजा करके और उसको जलाओ तो आग जलेगी नहीं, केवल धुआं धुआं दिखेगा। और लकड़ी जो है उसमें आग है ना? लकड़ी में आग है, धुआं भी नहीं है और जल भी नहीं रखते, किंतु आग उसमें है, ज्यादा घर्षण कर दो आग निकल जाए। इसी प्रकार से शंकर जी तम अर्थात तो लकड़ी स्थानीय है, वो आंख उससे दर्द नहीं होता, आंखों में ज्वाला नहीं होता, आग नहीं दिखती है, और वो धुएं से भरा पड़ा है, इसलिए धुएं की अपेक्षा ये लकड़ी को श्रेष्ठ माना गया। इसमें जब चाहो तब उसमें से आग पैदा कर सकते, इसलिए संकट तत्व को विचार की दृष्टि से श्रेष्ठ बनता है। इसलिए ब्रह्मा की अपेक्षा संकट जी श्रेष्ठ है और वो भगवान के साथ अभिन्न है, इसलिए उनकी निंदा नहीं करो। मैं भगवान विष्णु की आराधना करता हूं इसलिए शंकर की नहीं करूंगा, शंकर जी को कोई सम्मान नहीं दूंगा, ये गलत है। अंदर तो उनको गुरु के रूप में मैं तो करो, गुरु के रूप में करो, शिक्षक के रूप में करो, क्योंकि उनकी जितनी भी भागवत की शिक्षाएं हैं सब शंकर जी के माध्यम से आई है। इसलिए वैष्णवानां यथा, इसलिए शंकर जी की अवज्ञा नहीं करनी। तब आप तो इतना बतला रहे हैं और भागवत में या कहीं लिखा गया है जस्तु नारायण आदि देवम ब्रह्म रुद्रादि देव समस्ते न विक्षेव सपाषंडी भवे तुम। आप शंकर जी को उनसे अभिन्न कर रहे हैं और उसमें लिखा है कि यदि बराबर मानेंगे अभिन्न मानेंगे तो अपराध हो जाएगा, पाषंडी हो जाएगा। तो इसके लिए कहते जरा समझो, शिव तत्व दो प्रकार के हैं। जिस कल्प में वैसे शंकर जी नहीं आते ऐसा बहुत कम चांस होता है, जिस समय में किसी कारण से वो नहीं आते तब जीव तत्व में कुछ अपनी शक्ति को प्रकाश करके विष्णु जीव तत्व का काम कराते हैं। ये जीव तत्व होते हैं। इस जीव को और ब्रह्मा जी को कृष्ण के बराबर, राम नारायण के बराबर मत अभिन्न मत समझो। किंतु जो संकट तत्व है यथार्थ, जो जिसको सदाशिव कहा जाता है, वो तत्व तो एक है ऐसा, और उनके प्रति अनादर मत करो।
कभी कभी होता है
ये, कभी हमें उस जीव को और कृष्ण को बराबर समझेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए अभी इतना तत्व हम कैसे जानेंगे साधारण आदमी? अरे भक्ति में प्रवेश करने के लिए चेष्टा होने पर हम अभी कंप्यूटर से क्या क्या देख रहे हैं, क्या क्या आश्चर्य बातें कर रहे हैं, और इतनी थोड़ी सी बात नहीं समझ में आएगी। भजन में प्रवेश करने पर कनिष्ठ अधिकारी में जब जम छोड़ करके आगे बढ़ने लगे, ये चीजें यदि हमारे समझ में आ सकती है बिना पढ़े लिखे आदमी, तो आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, जरूर हो जाएगा। इसलिए संतों के पास में जाने से ये सब चीजें समझ में आती है। और तथा निंदा मत करो, यदि सम्मान नहीं दे सकते तो निंदा मत करो। यदि हो गया है ऐसा तो ये कैसे हो गया, हमने तो किया नहीं, जन्म में दूसरे जन्म में हो गया होगा, अपराध तो जरूर है। इसलिए ऐसा करो, निरंतर हरिनाम करो और फिर से ऐसा मत करो। हरिनाम कब में करना पड़ेगा? जितने प्रकार के अपराध हैं उनमें हरिनाम में मुख्य है, वो हरिनाम करते चलो और फिर ऐसा ना। एक और बात चौथी चीज, श्रुतियों की निंदा मत करो। कनिष्ठ अधिकारी ऐसा करता है जो सब सबको।
इसमें एक प्रश्न है,
क्या हो?
ब्रह्मा को भगवान ने अपना एक शक्ति दी, वो उसको सत्तावेज अवतार मानेंगे?
नहीं, उसको गुना बताते हैं,
गुना बताते
ब्रह्मा विष्णु महेश तीन गुना।
परशुराम को एक शक्ति दी,
हाँ वो सत्तावेज।
इन दोनों में कैसे वो
इनमें दिया है?
उनका संचार किया,
गुणों का संचार किया, तांत्रिक गुण और उनमें बल शक्ति दिया, शक्ति दी। जैसे नर जी ने भक्ति शक्ति दी, व्यास में भक्ति शक्ति, कपिल में ज्ञान शक्ति दी, पृथु में पालन की शक्ति दी, ऐसे ऐसे शक्ति दिया।
नारायण को भी हम
एक नहीं कहेंगे,
कई कई जगह परशुराम को
ये आवा आवेश नहीं जानने चाहता। और एक दूसरी चीज, इसमें भी हमको सावधान रहना है, क्या? श्रुतियों के को निंदा मत करो। श्रुति मैंने वेद, गीता, भागवत, रामायण, पुराण, ये निंदा कैसे होती है? एक जगह लिखा है कर्म करो कर्म करो, और एक जगह है कर्म से कभी भी भक्ति नहीं होगी, कर्म मत करो। चला
सिद्धि को
तमोगुण सांसिक दिया नहीं
वो नहीं होगा।
अरे भाई बहुत जल्दी मत
करो,
बहुत तेज मत करो,
ये
तो हमारा सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। एक सांप निकला ना, मैंने कहा इससे मारो, हाथ से मारेगी क्या करेगी, एक लठिया ले लो और लठिया से सांप को मार करके लठिया भी फेंक दो। एक कांटा बड़ा है पैर में तो वो कैसे निकलेगा, एक कांटी से ही निकलेगा, सुई भी काटा है निकाल करके तुमको सुई की भी जरूरत नहीं, काटे कि नहीं दोनों को फेंक दो। ऐसे शंकर जी जगत की सृष्टि करते हैं तो असुरों का संहार, जीवों का पालन करने के लिए कुछ ऐसे उनको काम करने पड़ते हैं, इसलिए प्रभु ने उनको अच्छा इसको साथ में लेकर के इस काम को करते हैं। इस स्तुतियों की निंदा उसमें कहीं लिखा है जज्ञार्थात कर्मणो लोकन नत्त कर्म बंदन तदर्थम कौमुखम ते मुक्त संग समाचर। पहले तो लिखा जी सब कर्म करो, बिना सब कर्म किए किसी की चित्त शुद्धि नहीं होगी। माता पिता का आदर करो, गुरु का आदर करो, पशु पक्षी जितने भी हैं उनके जैसे हैं ये सब का कुछ आदर करो। और फिर कहा भगवत भक्ति के स्टेज में जब ऊपर चला जाता है तो लिखा सर्वधर्मान परित्यज्यमान एकम शरणम ब्रज। ऐसा क्यों कहा, बात कहते जो करो करो, यदि तुम ये कहेगा मैं नहीं कर्म करता तो मिथ्याचारी सब उच्चते। क्या है उसके नहीं नहीं मिथ्याचारी सब उच्चते, मैं कर्म नहीं करता, ये यदि कोई कहता है मिथ्या है।
यदि हम न वचन जातो तो मैं जन्मते मम वात मनोवर्तते मन्दिरे।
ये दूसरा अध्याय का मिथ्याचारी सब उच्चते। ये श्वास लेना भी कर्म है, सोना भी कर्म है, सुनना भी कर्म है, इसके बिना कोई रह सकता है, खाना भी कर्म है। अर्जुन कहता है कि मैं नहीं लड़ाई करूंगा तो मैं नहीं कर्म करूंगा, यदि ऐसा कहता तो मिथ्याचारी है, कर्म करना पड़ेगा। इसलिए कहा गया शास्त्र में विवाह करना चाहिए, शास्त्र में किया गया, भागवत में आया प्रसंग परीक्षित जी को उपदेश का। यज्ञों में पशु की हिंसा की जाती है, कहीं कहीं मांस खाने का भी बतलाया गया, किस लिए, इसलिए कहा गया एक व्यक्ति है जब किशोरावस्था में पहुंचा, मां बाप कुछ नहीं देखता, भोगी होकर के इधर उधर डोल रहा है, उसने कहा कि विवाह करके एक स्त्री के साथ में रहो, तुम इसलिए बलि प्रमुख देते हो, किस लिए, उसकी व्यभिचारिता को रोकने के लिए विवाह की व्यवस्था की गई, इसलिए नहीं कि खुला इधर उधर में डोलते रहो, स्त्रियों के लिए पुरुषों के लिए दोनों के लिए। यज्ञ में कहीं पूरा पान की विधि लिखी गई, इसलिए मद को छुड़ाने के लिए, शराब को छुड़ाने के लिए, जैसे ये विवाह की इसलिए व्यवस्था दी गई, व्यभिचारी होकर के मत घूमो इधर उधर, नहीं तो लोगों से झगड़ा होगा, तकरार होगा, मारपीट होगी, तुम मारे जाओगे और इस लोक में परलोक में सब जगह तुम्हारी निंदा होगी, इसलिए एक स्त्री के साथ में एक पति के साथ में रह करके अपना जीवन का निर्वाह करते हैं, ये विधि दी गई, इसलिए उच्छृंखल होने से बचाने का। दूसरी बात, यदि मांस खाना है तो पहले लोग खाए हैं, तामसिक लोग खाएंगे, जो अत्यंत तो तामसिक व्यक्ति है, पशु के समान है, आप किसको किसको रोकेंगे, आप बात को खाने से रोकेंगे, और ऐसे बात के स्वभाव के व्यक्ति हैं उनको रोकेंगे, यह असंभव। इसलिए वहां पर कहा गया यदि तुमको खाना है तो अच्छा यज्ञ करो, उसमें यज्ञ में एक पशु की हिंसा करके बकरी इत्यादि की, और सबको खिला करके जो तुम्हारे आदमी हैं और तब खाओ। अंकुश लगाया गया जहां तहां जैसे तैसे काट करके खा रहा है, ऐसा नहीं। यज्ञ करो, यज्ञ में ऐसे पहले की प्रथा, आजकल की कोई ऐसी नहीं, ये भी हिंसात्मक चीज है, इसका भी मना किया गया है उनको संयम करने के लिए। इस तरह से संयम करते करते चित्त शुद्धि होगी, इसके बाद में ज्ञान होगा, संतों का संग होगा, फिर भक्ति में प्रवेश कर जाए। इसलिए सूचियां एक साथ परिमय है। गीता का पहला श्लोक अंतिम श्लोक एक साथ परिमय है, भागवत का पहला श्लोक और अंतिम श्लोक एक साथ परिमय है। क्या? भगवान की भक्ति करो बस। इसके लिए कहीं कर्म की व्यवस्था दी गई, कहीं ज्ञान की व्यवस्था दी गई, कहीं तपस्या की व्यवस्था दी गई, कभी ध्यान की व्यवस्था दी गई। इसलिए इसको अलग अलग मत समझो, इसलिए सूचियों को मत निंदा करो। वो अधिकारियों के लिए, उन अधिकारियों को संयमित करके आगे बढ़ने के लिए वो व्यवस्थाएं दी गई है। नहीं तो जैसे ये इसमें लिखा है कि कर्म करो, हम इसको नहीं मानते। जैसा कि उपासना करता है, दुर्गा जी की उपासना करता है, ये भ्रष्ट है, इसका मुख नहीं देखेंगे। तो सूची में लिखा, भागवत में नहीं लिखा कि दुर्गा देवी की पूजा करो, जगत के लोग पूजा करेंगे कौन सी देवी जो कृष्ण के साथ में जन्मी है, योग माया। अजय भाई दिन ध्याचल वासनी दुर्गा काली इनका नाम होगा, जगत के लोग अपनी मनोवांछा को पूर्ण करने इनके लिए पूजा करें। इसमें कहीं विरुद्ध भाव नहीं, उनको क्रमशः उन्नत करने के लिए करते 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 तो साधुओं का संग होगा, फिर भक्ति में पड़ जाएगी। इसलिए स्तुतियां का जो तात्पर्य है, समस्त मंत्रों का तात्पर्य भगवान की तरफ में ले जाना है, किसी का कोई विरोधी नहीं है। जिस प्रकार से क्लास 1-2 का विरोधी नहीं है, एमए का विरोधी नहीं है, उसी प्रकार से सब एक लाइन में, एक ही योग, पहले कर्म योग, इसके बाद में ज्ञान योग और अंत में कर्म। ये तीन नई पथ है, एक ही पथ है। पहले योग का नाम भक्ति योग, कर्म योग, इसके बाद में ज्ञान योग, इसका भक्ति योग। इसलिए सूचियों से निंदा मत। यदि ऐसा तुमने किया है, बहुत से भावावास में कहते हैं शास्त्रों का पत्र करते हैं कि दोनों में सामंजस्य नहीं है, यहाँ पर एक और दूसरी जगह में विरोध हो रहा है, नहीं तुम नहीं समझेगा कभी। इसलिए निंदा मत करो, उसको समझने की चेष्टा करो। इस तरह से जितने प्रकार के अपराध हैं और सब चीजें हैं, इसका विचार हम लोगों ने किया। जब निष्ठा होगी, जब छोड़ देंगे, पूर्ण रूप में नहीं छूटेगी, कुछ आंशिक रूप में छूटेगा, अभी कुछ कुछ रहेगा, वो भावावस्था तक जाएगा। प्रेम बहाने पर आत्यंतिक ये निवृत्ति होगी अपराध और इस सब। इसलिए निष्ठा, इसके बाद में निष्ठा का स्थान आता है। निष्ठा मैंने कब समझो कि निष्ठा हुई, कैसे समझेंगे जब हमारी निष्ठा हुई कि नहीं, इसके लिए एक मापदंड दे रहे हैं। ये दूध ठीक है कि पानी है, कि पानी मिलावट है, और कितना पानी मिलावट है। आजकल यंत्र निकले हैं ना, पहले के या भी लोग उसमें हाथ डाल करके अंगुली पर देखते हैं, नख पर देखते हैं कितना पानी है, कितना कहते हैं जैसे अच्छे दूध में पानी मिलाया है या पानी में दूध मिलाया है। मथुरा में प्राय पानी में दूध मिलाते हैं, मक्खन भी निकाल दिया, दूध देखने में मिलता। तो कहते हैं कि निष्ठा जब होगी, उसके लक्षण क्या है, अपराध इत्यादि कुछ दूर हो जाता है। उदाहरण दिया, एक आदमी है, उसको 105 डिग्री बुखार है, अपने आप कुछ नहीं खाएगा, रुचि नहीं है, उसको डॉक्टर से दवा दे करके पथ्य के लिए थोड़ा सा दूध इत्यादि या कुछ ऐसा चीज है उसको दे, रुचि नहीं है न पीने की इच्छा है, तो भी दे रहे। क्यों कह रहे हैं? यदि किसी को अपराध है, नाम में रुचि नहीं हो रही, तो क्यों हमें करने की क्या जरूरत है? रुचि से हो तो सब कुछ ठीक था, ऐसा प्रश्न उसके लिए कहते हैं। जब बुखार अत्यंत से तेज है, किसका बुखार? अपराध होगा, उस समय में हरिनाम में रुचि नहीं होगी, किंतु अपने कर्मों का फल, अपराधों का फल भोगने पर, भोगते भोगते जब कुछ पारा उतर जाता है, बुखार की डिग्री कम हो जाती है, उस समय थोड़ी सी भूख लगती है, उसमें भूख लगती है, और फिर थोड़े थोड़े देर के बाद में रुचि आती है, फिर तभी शरीर बहुत दुर्बल रहता है, और फिर दूध की मात्रा और पौष्टिकारिक वस्तुओं की यदि मात्रा को धीरे धीरे बढ़ाते जाए, धीरे धीरे पुष्टिकार हो, शरीर भी ठीक हो जाता है, बुखार भी ठीक हो जाता है। ठीक भक्ति की यही स्थिति है। एक आदमी महा अनाचारी है ना, अपराधी है, उसका बुखार का इतना है जिसको नाम नहीं सुनना चाहता, भगवान की कथा नहीं सुनना चाहता, ठाकुर जी का प्रसाद इधर से उधर करके दो, उसको दवा दो, नहीं सुनता हरि नाम सुनाओ। जो कोई नहीं सुनना चाहता उस गली से पांच सात आदमी निकल करके मृदंग बजाता है, हरे कृष्ण करते हुए जाओ, अरे ये बड़े बदमाश है, वो तो गली से निकलते हैं, कहेंगे किंतु धीरे धीरे ही उस पर ऐसा फल करेगा जिस दिन में, अरे भाई आए तो आए नहीं, क्यों नहीं आए, क्या बात हो गई? इसलिए बुखार उतरते ही अब दवा काम करेगी, और जो छूटता रहेगी वो भगवान नाम से, भगवत भक्ति से वो पूरा होती चली जाएगी। इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं है। और व्यभिचारी आदमी, लंपट आदमी क्यों भगवान का नाम करे, भक्ति करे, ये भी संदेह करने की जरूरत नहीं है। जो जहां है स्थान है स्थित, अपने स्थान से भगवान का ये सब करता है। बुखार धीरे धीरे उतरेगा, कैसे उतरेगा? खोदो से। भगवान ने ऐसा बनाया है कर्म चक्र, एक दिन अनुताप आएगा। एक आदमी महा लंपट, महा व्यभिचारी, कोई बाधा नहीं पड़ी तो बरसा जाता है, और पांच छह आदमी ने एक बार पकड़ करके अच्छी तरह से घूसे और देख करके खूब अच्छी तरह से उनसे छक्के छुड़ा करके मुख रगड़ दिया और उनका कोई अंग काट लिया और थोड़ा सा नशा उठा। अब मत करना, काम पकड़ो, बड़ी केस कर दिया, हजारों रुपए का हर जाना देना पड़ा। इस तरह से उतरता है नशा। इसलिए माया ये बड़ी दयालु है, घानी में पीस करके हमारे कर्म फलों से हमको हमारा बुखार उतारती है, इसलिए दया कर। तो इसलिए जब समझो कि हमारी निष्ठा किस स्थिति, निष्ठा आई कि नहीं, अभी आके पहले की तरफ में अभी अनर्थ युक्त हमारा नाम हो रहा, इसके लिए पांच चीजें हैं। जब हरि नाम करने में, कीर्तन में, श्रवण में और स्मरण में, ये तीन चीजें हैं। क्या क्या? पहला नहीं, पहले कीर्तन, इसके बाद में श्रवण, और इसके बाद में स्मरण। हरि नाम कीर्तन करने में बड़ा उत्साह लग रहा है, किंतु जब ही किसी ने हरि कथा ताना सुनना आरंभ किया उसको कहते हैं लय। और जब दीक्षा मंत्र वाला कोई नहीं है, वहां पर एक आदमी कह रहा है, सुन रहा है श्रवण में, और भी पांच दस आदमी बैठे हैं, उसमें लय होने में, सोने में कुछ लज्जा आएगी, तो अभी वो नित मानेगी, वो तो रात मन के पत्थर बन करके आंखों पर चढ़ जाएगी। और समझो जब भी कुछ कमी है, कीर्तन में उत्साह हो रहा है, श्रवण में कुछ कुछ है कभी कभी आती, और जब गुरु का दिया हुआ मंत्र करने बैठे, ओम या क्लिंग आरंभ किया, और साथ ही साथ में हमारे एक ब्रह्मचारी जी थे नवदीप में, ठाकुर जी का पूजा करने के लिए गए, तो पूजा करने में सबसे पहले अंधी करदा होता है, गुरु का दिया हुआ जो दस मंत्र है उनको करना पड़ता है ध्यान से। तो ध्यान लगाया और पक्के ध्यान में चले गए, दो घंटा तक ठाकुर जी का दरवाजा खुला नहीं। भैया ठाकुर जी का दरवाजा किसने नहीं खुल रहा, क्या बात हो गई? देख हमारे महाराज जी थे नारसिंह महाराज जी, क्या हो रहा भाई, ये दरवाजा नहीं खुल रहा है, क्या बात हुई? उन्हें जोर करके धक्का दिया, धक्का देखा देखा जैसे वो चुपचाप। में थोड़ा कम होता है, उससे अधिक होगा छोड़, और उससे भी अधिक होगा, इसको कहते हैं लय। जब ये तीनों में नहीं हो और स्मरण करने में भी एकदम शांत चित्त से कनिष्ठ चित्त से गुरु का मंत्र का जो दिया है ध्यान हो रहा है, बड़ा उत्साह के साथ मनन हो रहा है, तब तो ये लय नहीं हुआ, अने तो फिर निष्ठा नहीं। अच्छा ये लय नहीं है, आप लोग विचार करके देखें ऐसा होता है कि नहीं? मैं समझता कि अधिकांश लोगों को ऐसा होता है, स्मरण में जरूर हो जाता है, चिंतन में करने में। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनको उसमें आनंद आता है, उनका सौभाग्य। एक होता है विच्छेद, लय विच्छेद अप्रतिपत्ति प्रसाय, और ये पांच चीजें जब हट जाए तब समझो कि अभी निश्चय ही है। तो अभी पहला बतलाया है लय का।